आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अधिकांश मध्ययुगीन वैदुष्य को महज टीकाओं तथा भाष्यों की रचना तक ही सीमित माना है और सही माना है। वस्तुतः सामंतवाद के पतन के साथ हिंदू धर्म के पंडितों तथा आचार्यों ने इस्लाम की ओर से आई चुनौती के आतंक में जिस एक बात पर सर्वाधिक बल दिया वह थी पुरानी व्यवस्था को सही सिद्ध करने के लिए शास्त्रों तथा प्राचीन धर्म ग्रंथों की नई व्याख्या। फलतः टीकाओं तथा भाष्यों का एक अंबार सा हमें इस समूचे काल में दिखाई पड़ता है। हिंदू समाज को संगठित करने के लिए नए नए आचारों तथा विधि विधानों का भी रूप सामने आया तथा प्राचीन आचारों तथा कर्मकांडों को भी फिर से रेखांकित किया गया। जाहिर है कि अतीत को फिर से जीवित करने का यह प्रयास तत्कालीन संदर्भों में पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो सका। नई आर्थिक तथा सामाजिक शक्तियां अपने नए विचारों के साथ सामने आकर प्राचीन आचार विचारों तथा विश्वासों को नई चुनौतियां दे रही थी। नए विचारक अपने विचारों के माध्यम से पुरातन व्यवस्था की असंगतियों को उभार रहे थे तथा समाज को संगठित करने के उद्देश्य से नई दिशाओं का प्रवर्तन कर रहे थे जो जाहिर तौर पर चली आती हुई लीग के विरोध में था। ऐसी स्थिति में ही सामंतवाद की जकड़बंदी के कमजोर पड़ने का लाभ उठाकर भारत में एक नए जन अभियान का जन अभियान का रूप सामने आया जिसे भक्ति आंदोलन के नाम से पहचाना जाता है। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे कि धार्मिक आवरण में ही सामने आने पर भी यह भक्ति आंदोलन कोरा धार्मिक आंदोलन नहीं था। श्री दामोदरन लिखते हैं, भक्ति आंदोलन का मूल आधार भगवान विष्णु अथवा उनके अवतारों राम और कृष्ण की भक्ति थी, किंतु यह शुद्धतः एक धार्मिक आंदोलन नहीं था। वैष्णव के सिद्धांत मूलतः उस समय व्याप्त सामाजिक आर्थिक यथार्थ की आदर्शवादी अभिव्यक्ति थी। सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रीय नवजागरण का रूप धारण किया। सामाजिक विषय वस्तु में वे जाति प्रथा के आधिपत्य और अन्यायों के विरुद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण विद्रोह के द्योतक थे। इस आंदोलन में ने भारत में विभिन्न राष्ट्रीय इकाइयों के उदय को नया बल प्रदान किया, साथ ही राष्ट्रीय भाषाओं और उनके साहित्य की अभिवृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यापारी और दस्तकार सामंती और शोषण का मुकाबला करने के लिए इस आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त करते थे। यह सिद्धांत कि ईश्वर के सामने सभी मनुष्य, फिर वे ऊंची जात के हों अथवा नीची जात के, समान हैं, इस आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया, जिसने पुरोहित वर्ग और जात के आतंक के विरुद्ध संघर्ष करने वाले आम जनता के व्यापक हिस्सों को अपने चारों ओर एकजुट किया। इस प्रकार मध्ययुग के इस महान आंदोलन ने न केवल विभिन्न भाषाओं और विभिन्न धर्मों वाले जन समुदायों की एक सुसंबद्ध भारतीय संस्कृति के विकास में मदद की, बल्कि सामंती उत्पीड़न और उत्पीड़न के विरुद्ध संयुक्त संघर्ष चलाने का मार्ग भी प्रशस्त किया। वहीं पृष्ठ 327। इस प्रकार यह भक्ति आंदोलन धार्मिक आवरण में भी देश के साधारण जन की व्यथा कथा का आंदोलन बनकर सामने आया, और जैसा कि हमने प्रारंभ में कहा है, इसने देश को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी ओर स्पंदित किया, सारे राष्ट्र की समग्र अभिव्यक्ति के रूप में सामने आया। दक्षिण में रामानुज इसके पुरोधा बने तथा उत्तर में इसे उनके शिष्य रामानंद सामने लाए। रामानुज ने ब्राह्मण, अब्राह्मण सभी को, यहाँ तक कि मुसलमानों को भी अपनी शिष्य परंपरा में लिया तथा दक्षिण में व्याप्त खान पान संबंधी कट्टरता एवं अस्पृश्यता जैसे सामाजिक विकृतियों पर प्रहार किया। यही काम उत्तर भारत में रामानंद ने किया। समूचे उत्तर भारत में भ्रमण करते हुए उन्होंने अपने क्रांतिकारी सामाजिक विचारों का प्रचार प्रसार किया। तुलसी को अपनी शिष्य परंपरा में लेते हुए कबीर को भी उसके अंतर्गत स्वीकार किया। राम नाम का उनका मंत्र सगुण तथा निर्गुण दोनों ही प्रकार की भक्ति का संवाहक बना। निम्न जातियों से तमाम संत इस भक्ति आंदोलन की लहर में ऊपर आए, जिनमें जुलाहा कबीर, बुनकर दादू, चमार रैदास, नाई सेना, दर्जी नामदेव, कसाई सतना आज प्रमुख हैं। चाहे पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, भक्ति आंदोलन का मुख्य नेतृत्व नीची कही जाने वाली जातियों के हाथों में ही रहा। इन संतों ने साधारण जनता को वर्ग, धर्म, जाति और संप्रदाय की संकीर्णता से मुक्त करते हुए परस्पर घुलने मिलने की प्रेरणा दी और इस प्रकार सामंतवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार किया। यह भक्ति आंदोलन कुछ मूलवर्ती आस्थाओं के तहत आगे बढ़ा और उन्हीं के नाते यह बावजूद विभिन्न प्रदेशों में अपने कमोवेश वेग के एक संश्लिष्ट चरित्र बनाए रख सका। ये मूलवर्ती आस्थाएं थी। धार्मिक विचारों के बावजूद जनता की एकता को स्वीकार करना, ईश्वर के समक्ष सबकी समानता का प्रतिपादन, जाति प्रथा का विरोध, इस विचार का प्रचार कि मनुष्य और ईश्वर के बीच तादात में प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है, न कि इसकी ऊंची जाति तथा धन संपत्ति पर, इस विचार पर जोर कि भक्त की ही आराधना का उच्चतम स्वरूप है तथा बाह्याचारों कर्मकांडों आदि की निंदा तथा भर्त्सना, इसके अलावा मनुष्य सत्य को सर्वोपरि मानते हुए वर्गगत जातिगत भेदभावों तथा धर्म के नाम पर किए जाने वाले उत्पीड़न का दृढ़ विरोध। भक्ति आंदोलन की ये मूलवर्ती आस्थाएं हमें उसके प्रत्येक पुरस्कर्ता के यहाँ प्राप्त होती हैं, और ये आस्थाएं इतनी प्रबल थी तथा इनसे जनमानस को इतनी परितृप्ति मिली कि भक्ति आंदोलन का आधार व्यापक से व्यापकतर होता चला गया। इस आंदोलन के भौतिक सामाजिक आधारों के प्रमुख पक्षों को रेखांकित करते हुए दामोदरन लिखते हैं, वह सुनिश्चित दृश्य समस्त जनता की एकता पर यह जोर दिया जाना ऐतिहासिक आवश्यकता के अनुरूप था। समय की मांग थी कि जाति पाति और धर्मों के भेदभाव पर आधारित तुच्छ सामाजिक विभाजनों का, जो घरेलू बाजार के विकास और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों के कारण अब एकदम निरर्थक हो गए थे, अंत किया जाए। ईश्वर के सम्मुख सभी प्राणियों की समानता का सिद्धांत उस नई सामाजिक चेतना का द्योतक था जो सामंती शोषण के विरुद्ध जूझने वाले किसानों और कारीगरों में फैल रही थी। व्यक्ति के गुणों और योग्यताओं पर जोर, जो ऊंची जाति या किसी विशिष्ट वंश में जन्म लेने के फलस्वरूप प्राप्त सुविधाओं के विपरीत था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ऐतिहासिक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का यह नारा एक नए पूंजीपति वर्ग का, जिसका की उदय हो ही रहा था, नारा था। ये विचार धार्मिक अर्थों में भी निस्संदेह मध्ययुग की उन परिस्थितियों को देखते हुए, जिनमें जाति पात की स्पर्धा और अंधविश्वासों के फलस्वरूप समाज का प्रकट करना असंभव हो गया था, प्रगतिशील थे। भक्ति आंदोलन ने केवल अंधविश्वास और जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने और ईश्वर की दृष्टि में सबकी समानता घोषित करने की बात तक ही अपने को सीमित नहीं रखा। इस आंदोलन के कुछ नेताओं ने तो मुगल आधिपत्य और कुशासन तथा सामंती शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध व्यापारियों, कारीगरों और गरीब किसानों के संघर्ष का नेतृत्व भी किया। वही 335 पृष्ठ। भक्ति आंदोलन के मूलवर्ती सामाजिक आर्थिक आधारों तथा उसके फलस्वरूप साधारण जन की आकांक्षाओं के अनुरूप एक शक्तिशाली सामंतवाद विरोधी उत्थान के रूप में, उसकी धार्मिक आध्यात्मिक परितृप्ति के एक प्रभावशाली अवलंब के रूप में उसकी विवेचना करने के उपरांत, अब हम भक्ति आंदोलन के संबंध में गजानन माधव मुक्तिबोध के विचारों को भी इस नाते प्रस्तुत करना चाहेंगे कि उनमें न केवल भक्ति आंदोलन के उद्भव विकास को एक पैनी नजर से देखा और आंका गया है, उनके बीच कुछ ऐसे सवाल भी उठाए गए हैं जो भक्ति आंदोलन की शक्ति के साथ साथ उन कारणों के प्रति हमें मुखातिब करते हैं जिनके तहत एक शक्तिशाली उत्थान होते हुए भी अंततः उसे बिखर जाना पड़ा। जाहिर है कि इन सवालों और उनके जवाबों से गुजरे बिना हम भक्ति आंदोलन की का उसकी समग्रता से आकलन नहीं कर सकते। गजानन माधव मुक्तिबोध ने भक्ति आंदोलन को मूलतः उच्च वर्गों तथा ऊंची कहे जाने वाली जातियों के खिलाफ निम्न वर्गों तथा जातियों के विद्रोह के रूप में देखा है। गो की समय के अपने तकाजे से भक्ति आंदोलन में ऊंची जातियों के भक्तों तथा संतों का भी योग रहा और उन्हें निम्न वर्गों के लोगों की आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति देनी पड़ी। मुक्तिबोध की दूसरी स्थापना यह है कि गो की भक्ति आंदोलन में ऊंच और नीच दोनों प्रकार के संतों और भक्तों का योग रहा। जहाँ तक सामाजिक भेदभाव तथा मानव एकता की मूलवर्ती आस्था का सवाल है, निम्न कहे जाने वाले संतों का योगदान अधिक भास्वर है। मुक्तिबोध की तीसरी महत्वपूर्ण स्थापना यह है कि भक्ति आंदोलन में उच्च वर्गों का प्रभाव शनैः शनैः मजबूत होता गया और भक्ति आंदोलन के बिखरने तथा अपना वास्तविकता खो देने का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। हम यहाँ मुक्तिबोध की बात को उन्हीं के शब्दों में रखना चाहेंगे। वे लिखते हैं, शिवाजी स्वयं मराठा क्षत्रिय था, किंतु भक्ति आंदोलन से जागृत जनता के कष्टों से खूब परिचित था और स्वयं एक कुशल संगठक और वीर सेनाध्यक्ष था। संत रामदास, जिसका उसे आशीर्वाद प्राप्त था, स्वयं सनातनी ब्राह्मणवादी था, किंतु नवीन जागृत जनता की शक्ति से खूब परिचित भी था। संत से अधिक वह स्वयं एक सामंती राष्ट्रवादी नेता था तथा तब तक कट्टरपंथी शोषक तत्वों में ये भावना पैदा हो गई थी कि निम्न जाति संतों से भेदभाव अच्छा नहीं है। अब ब्राह्मण शक्तियां स्वयं उन्हीं संतों का कीर्तन गायन करने लगी, किंतु इस कीर्तन गायन के द्वारा वे उस समाज की रचना को जो जातिवाद पर आधारित थी मजबूत करते जा रहे थे। एक प्रकार से उन्होंने अपनी परिस्थिति से समझौता कर लिया था। दूसरे भक्ति आंदोलन के प्रधान संदेश से प्रेरणा प्राप्त करने वाले ब्राह्मणों में भी होने लगे थे। रामदास इस प्रकार से ब्राह्मणों में से आए हुए अंतिम संत हैं। इसके पहले एकनाथ हो चुके थे। कहने का सारांश यह कि नवीन परिस्थिति में यद्यपि युद्ध सत्ता, राज सत्ता शोषित और गरीब तबकों से आए हुए सेनाध्यक्षों के पास थी, किंतु सामाजिक क्षेत्र में पुराने और नए सामंतवादियों से समझौता हो गया था। नए सामंतवादी कुनबियों, धनगरों, मराठों और अन्य गरीब जातियों से आए सेनाध्यक्ष थे। इस समझौते का फल यह हुआ कि पेशवा ब्राह्मण हुए, किंतु युद्ध सत्ता नवीन सामंतवादियों के हाथ में रही। उधर सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में निम्न वर्गीय भक्ति मार्ग के जनवादी संदेश के दांत उखाड़ लिए गए। उन संतों को सर्ववर्गीय मान्यता प्राप्त हुई, किंतु उनके संदेश के मूल स्वरूप पर कुठाराघात किया गया और जातिवादी पुराण धर्म पुनः निशंक भाव से प्रतिष्ठित हुआ। नई कविता का आत्म संघर्ष तथा अन्य निबंध, पृष्ठ संख्या 88। जो स्थित महाराष्ट्र की थी, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में मुक्तिबोध के अनुसार वही उत्तर भारत में भी दिखाई पड़ती है। यहाँ भी भक्ति आंदोलन के सूत्र निम्न वर्गों से धीरे धीरे उच्च वर्गीय संतों के हाथ में केंद्रित होते जाते हैं, और एक बार भक्ति आंदोलन में ब्राह्मणों का प्रभाव जम जाने पर वर्णाश्रम धर्म की पुनर्विजय की घोषणा में कोई देर नहीं थी। मुक्तिबोध की मान्यता है कि गो की महाराष्ट्र में सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति में कोई द्वैत नहीं था, किंतु जहाँ तक उत्तर भारत का सवाल है, यहाँ निर्गुण भक्ति निम्न वर्णों के संतों की प्रमुखता को सूचित करती है तथा निम्न वर्ण के साधारण जन भी उसके अंतर्गत बहुसंख्या में एकत्र होते हैं। कर्म कांडों, जाति प्रथा तथा मानव एकता की बात इन निर्गुण संतों का अवलंब पाकर निर्गुण भक्ति में जितने आवेग और जोर शोर के साथ सामने आती है, सगुण भक्ति के अंतर्गत वह इस कारण उतना वेग तथा प्रमुखता नहीं पाती कि उसके पोषक संत अधिकतर उच्च वर्ग के थे और निर्गुण संतों की भांति जातिगत विषमता तथा वर्णगत अपमान का उन्हें सीधा अनुभव नहीं था। निर्गुण भक्ति में जहां हमें जाति वर्णगत भेदभाव तथा उसके फलस्वरूप साधारण जन पर होने वाले अत्याचारों के प्रति तीखे विद्रोह का भाव दिखाई पड़ता है, सगुण कृष्ण भक्ति में आकर वह एकदम कम हो जाता है। फिर भी सगुण कृष्ण भक्ति का आलंबन कृष्ण के होने के नाते, और जहाँ तक कृष्ण के लोकप्रिय चरित्र का सवाल है, उस नाते सगुण कृष्ण भक्त कवि यदि जातिगत तथा वर्णगत भेदभाव आदि का तीखा विरोध नहीं करते, तो कृष्ण की लीलाओं में ही मन रमाने के नाते निर्गुण भक्ति की इस निम्न वर्गीय जनवादी रुझान का विरोध भी नहीं करते। सगुण राम भक्ति में आकर स्थित काफी कुछ बदलती हुई दिखाई देती है। जनसाधारण की आकांक्षाओं से सगुण राम भक्ति भी जुड़ती है, पर उच्च वर्ण के नेतृत्व की मजबूती के नाते वह इस निम्न वर्गीय जनवादिता का विरोध न करते हुए भी पुरानी व्यवस्था अर्थात वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करती है और धीरे धीरे उस निम्न वर्गीय जनवादी रुझान को एकदम समाप्त ही कर देती है। मुक्तिबोध ने गोस्वामी तुलसीदास का उदाहरण देते हुए अपनी बात को पुष्ट किया है, जिस पर हम अपने तुलसीदास शीर्षक निबंध में विचार करेंगे। संप्रति हम उनके शब्दों में यही प्रस्तुत करना चाहेंगे कि तुलसी को भक्ति का यह मूल तत्व तो स्वीकार ही करना पड़ा कि राम के सामने सब बराबर हैं, किंतु चूंकि राम ने ही सारा समाज उत्पन्न किया है, इसलिए वर्णाश्रम धर्म और जातिवाद को तो मानना ही पड़ेगा। मुक्तिबोध सवाल करते हैं, क्या यह एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि राम भक्ति शाखा के अंतर्गत एक भी प्रभावशाली और महत्वपूर्ण कवि निम्न जातीय शूद्र वर्गों से नहीं आया? क्या यह एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत रसखान और रहीम जैसे हृदयमान मुसलमान कवि बराबर रहे आए, किंतु राम भक्ति शाखा के अंतर्गत एक भी मुसलमान और भी शूद्र कवि प्रभावशाली और महत्वपूर्ण रूप से अपनी काव्यात्मक प्रतिभा विशद नहीं कर सका? निष्कर्ष यह कि जो भक्ति आंदोलन जनसाधारण से शुरू हुआ और जिसमें सामाजिक कट्टरपन के विरुद्ध जनसाधारण की सांस्कृतिक आकांक्षाएं बोलती थी, उसका मनुष्य सत्य बोलता था, उसी भक्ति आंदोलन को उच्च वर्गीयों ने आगे चलकर अपनी तरह बना लिया और उससे समझौता करके फिर उस पर अपना प्रभाव कायम करके और अनंतर जनता के अपने तत्वों को उनमें से निकाल कर उन्होंने उस पर अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित कर लिया। वही पृष्ठ 90। भक्ति आंदोलन के अपने मूलवर्ती ताप को खो देने के कुछ और भी कारण है। मसलन उच्च वर्गों के हाथ में उसका नेतृत्व जाने के परिणाम स्वरूप सामंती ताकतों का पुनः अपने को मजबूत करना और संगठित होना। यही नहीं, निम्न वर्गों के बीच से पैदा हुए सेना अध्यक्षों और नेताओं का नए सामंती घराने गठित करना और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को पुनः सिरमौर बनाकर पूजना। जिस सामंतवाद को ढाना था उसे ताकत मिली नहीं कि ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर की भावना फिर से प्रतिष्ठित हो गई और निर्गुण मत की निम्न वर्गीय जनवादी रुझान तथा दिशा को समाप्त हो जाना पड़ा। भक्ति आंदोलन की मूलवर्ती निम्न वर्गीय जनवादी चेतना के बिखरने का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण, जिसकी ओर श्री दामोदरन तथा मुक्तिबोध दोनों ने ही इशारा किया है, यह है कि सामंतवाद के पुनः शक्ति पा जाने के फलस्वरूप राष्ट्रीय पूंजीवादी शक्तियों का वह उभार रुक गया जिसकी संभावना दिखाई पड़ रही थी और जो सामंतवाद को मूल से उखाड़ सकने में सक्षम होती। समाज के आर्थिक सामाजिक स्तर पर वर्गहीन हुए बिना सामाजिक आर्थिक समानता की बात नहीं की जा सकती और यह सब पूंजीवाद के अभ्युदय की स्थिति में ही संभव था, जो नहीं हो सका। श्री दामोदरन का कहना है, यदि यह आंदोलन सदा के लिए सामाजिक असमानता और जात प्रथा के उत्पन्न अन्याय को खत्म नहीं कर सका तो संभवतः इसका कारण यह था कि कारीगर, व्यापारी और दस्तकार, जो इस आंदोलन का मुख्य आर्थिक आधार थे, अब भी कमजोर और असंगठित थे और इससे पहले कि उदीयमान पूंजीपति वर्ग एक वर्ग के रूप में अपना पूर्ण विकास प्राप्त करे, ब्रिटिश पूंजीपतियों ने देश को जीत कर अपने कब्जे में कर लिया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग बना लिया। पूर्वोद्धृत 337 पृष्ठ। अंग्रेजों ने इस प्रकार न केवल भारत में राष्ट्रीय पूंजीवाद के उदय को रोका, उन्होंने समाज के मूलवर्ती ढांचे को अपरिवर्तित रहने दिया अर्थात सामंतवाद की जड़ें मजबूत की। कुल मिलाकर भक्ति आंदोलन अपनी युगांतरकारी भूमिका समाप्त कर काल के एक बिंदु पर आकर समाप्त हो गया। यह सही है कि जिन संतों तथा भक्तों ने, चाहे वे निर्गुण संत हों चाहे सगुण संत और भक्त, सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाई, जात प्रथा का विरोध किया, मानव मात्र की समानता का नारा बुलंद किया तथा एक मानव धर्म तथा एक मानव संस्कृति का आदर्श सामने रखा, ये सब भाववादी आदर्शवादी सदिच्छाओं से ऊपर नहीं उठ सके। उनके पास समाज तथा व्यवस्था की वास्तविकता को समझने की वैज्ञानिक दृष्टि भी नहीं थी। वे मात्र मानवतावादी उद्देश्यों से प्रचालित थे और जो कुछ उन्होंने कहा और प्रचारा संवेदनात्मक आधार पर ही कहा और प्रचारित किया और भक्ति आंदोलन के किसी स्थायी प्रभाव के न रहने में यह सब भी मूलवर्ती कारणों के रूप में विद्यमान है। फिर भी अपने समय और अपने युग के बीच उन्होंने जो कुछ किया वह युगांतरकारी ही माना जाएगा। उनकी अपनी सीमाएं रचनात्मक तथा विचारधारात्मक अपनी जगह पर हैं। उनका प्रदेय भारतीय सांस्कृतिक जीवन के इतिहास में कभी न भुलाई जा सकने वाली एक हकीकत है, इसे हमें स्वीकार करना होगा।